الحمد لله وكفى والسلام على عباد الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا. تو جو آیات ابھی تلاوت کی گئیں، یہ آیات نمبر 62 ٹھیک ہے، یعنی 59 سے لے کر کے 62 سورہ انعام کی آیات ہیں، اور ان کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں معرف القرآن کی جلد نمبر 3 سے، اور اس میں 344 صفحہ ہے، 344، جس پہ ہم نے معروف مسائل پڑھنے پچھلی کلاس میں شروع کر دیے تھے. تو ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی ہی بات کری ہے، ٹھیک ہے، کہ میں کون ہوں، میں کیسا ہوں، اور اپنی صفات اور اپنی جو ہے وہ قدرت کے بارے میں ہمیں بتلایا ہے. تو اپنے پروردگار کے بارے میں جاننا، یہ تو ہر ایمان والے کی، جو کہ پروردگار پر ایمان لے کر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے اس کے بارے میں بتایا، اس کو تسلیم کرتا ہے، تو اس کے لیے تو پھر سب سے اہم بات یہی ہوتی ہے کہ اس کا پروردگار کیسا ہے. جب کسی بھی چیز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے تو اس کی تفصیل جاننا یہ ہماری فطرت کے اندر ہے، ٹھیک ہے. جیسے کوئی آپ کو خبر ملتی ہے کہ بھئی فلانی جگہ پر کوئی بہت بڑا سیلاب آ گیا، کوئی بہت بڑا طوفان آ گیا، زلزلہ آ گیا، یا یہ کہ فلانی جگہ پر جو ہے وہ کوئی بہت بڑا جو ہے وہ ایونٹ ہو رہا ہے، تو ہماری فطرت میں کیا چیز ہوتی ہے کہ ہم اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے، کب ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. پچھلے دنوں کسی جمعے کے درس کے اندر بھی یہ بات ہوئی تھی، امید ہے کہ کسی کو یاد ہوگا کہ امریکہ میں ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہم نے دیکھا تھا، کہ ہم سڑک کے اوپر جا رہے تھے اور ٹریفک ایک دم سے سلو ہو گئی تھی، تو ہم سمجھے کہ بھئی آگے لگتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا ہے، کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹریفک آہستہ آہستہ نکل رہی ہے، پولیس والے اس کو ایسے سائڈ کی طرف سے کر کے نکال رہے ہوں گے، تو ظاہر ہے اس وجہ سے ٹریفک سلو ہو گئی ہے. لیکن جب ہم آہستہ آہستہ بڑھتے 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 اس مقام پہ پہنچے کہ جہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو پتہ یہ چلا کہ ایکسیڈنٹ اس سائڈ پر نہیں ہوا تھا جس سائڈ پہ کہ ٹریفک ہماری جا رہی تھی، بلکہ وہ دوسری سائڈ پر ہوا تھا، یعنی آنے والی ٹریفک کی سائڈ پر ہوا تھا. لیکن ہو کیا رہا تھا کہ جتنی گاڑیاں یہاں سے جا رہی تھیں نا، وہ ساری کی ساری جب اس جگہ پہ پہنچتی تھیں، تو وہ لوگ جو تھے گاڑی والے، وہ اپنی گردن کو موڑتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کیا ہوا، اس کے بعد پھر آگے جاتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ نیک ٹرنر باقاعدہ ایک ٹرم ہے امریکہ کے اندر، لیکن یہ انسانی نفسیات کو بتاتی ہے کہ انسان جب کسی چیز کو اہم سمجھتا ہے تو پھر اس کی تفصیل جاننے کی کوشش کرتا ہے. لیکن کیا ہوا اللہ کے بندوں کو کہ وہ اللہ کے بارے میں تفصیل جاننے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ کو جاننا، اللہ کے بارے میں معلوم کرنا، اس کی تفصیل جاننے کی کوشش نہیں کرتے، ٹھیک ہے. تو یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا؟ یہ یقیناً یہ ہماری یا تو فطرت खराब हो गई, हमारी या तो फितरत मस्ख हो गई कि किसी चीज को अहम जानने के बावजूद हम उसकी तफसील जानने की कोशिश नहीं करते, है ना। ये तो फिर आप अपनी फितरत के खिलाफ चले गए, है ना। फितरत ये थी कि जिस चीज को अहम जानते हैं उसकी तफसील जानने की कोशिश करते। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि हमारी फितरत मस्ख हो गई ना, खराब हो गई ना। या दूसरी सूरत क्या है, क्या आप बता दें दूसरी सूरत क्या हो सकती है? एक सूरत तो यह है कि हमारी फितरत मस्ख हो गई, और दूसरी सूरत क्या है जी, कौन बताएगा? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, क्या है भाई? वी डोंट थिंक इट्स इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। हम उसको अहम समझते ही नहीं, ठीक है, हम उसको अहम समझते ही नहीं। किसको अहम नहीं समझते? यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम अल्लाह की बात कर रहे हैं, अल्लाह, जिसको हम कहते हैं अपनी जुबान से कि वो हमारा खालिक है, मालिक है, परवरदिगार है। हम रोजाना माशाल्लाह दीनदार हल्का है ये सारा का सारा, तो इसमें तो उम्मीद है कि सभी नमाज पढ़ती होंगी और पांचों वक्त पढ़ती होंगी, बल्कि बहुत सी ऐसी भी होंगी तो जो कि तहज्जुद भी पढ़ती होंगी, ठीक है ना, और इसके अलावा इशराक और अवाबीन और चाश्त ये भी पढ़ती होंगी और तस्बीहात भी फेरती होंगी और भी पता नहीं क्या क्या अल्लाह के लिए काम करती होंगी। तो अल्लाह को अहम जानती हैं लेकिन अल्लाह के बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं करती, ठीक है। इतनी जो इबादतें करती हैं तो भाई कुछ अल्लाह को शायद अहम जानते हैं, इस वजह से इबादत करते हैं या किसी और वजह से इबादत करते हैं, ठीक है, जस्ट गोइंग विद द फ्लो, राइट, किसी को करते देखा इस वजह से कर रहे हैं, ठीक है। अल्लाह की खातिर कर रहे हैं तो अल्लाह को अहम जान रहे हैं, या अल्लाह को अहम नहीं जान रहे हैं, किसी और वजह से कर रहे हैं, ठीक है भाई। अल्लाह को अहम जान रहे हैं तो फिर तो ये फितरत के खिलाफ है हमारी कि हम अल्लाह के बारे में जानने की क्यों नहीं कोशिश कर रहे, ठीक है। तो अल्लाह के बारे में जानने की कोशिश कैसे करेंगे? अल कुरान अजीम शान, अल कुरान अजीम शान, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसको छोड़ करके अल्लाह के बारे में नहीं जान सकते, इसको छोड़ करके अल्लाह ताला का के बारे में इल्म हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हम सबको मौका अता फरमाया, यहाँ पे जो 72 या 73 लोग मौजूद हैं कम से कम, उनको मौका अता फरमाया कि अपने कुरान मजीद में अपने बारे में यानी अल्लाह के बारे में हम इल्म हासिल करने की नीयत से यहाँ पे बैठे हैं। अल्लाह ताला इस इल्म को हमारे वजूद के अंदर भी पहुंचा दे, यानी हमारे समझ में भी पहुंचा दे, और इसके मुताबिक जो फिर अपने सोच को और अपने जाविया निगाह को बदलने की भी हमें, ठीक करने की भी हमें तौफीक अता फरमा दे। तो मारूफ मसाइल में हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह इन आयात की तफसीर में लिखते हैं कि गुनाहों से बचने का नुस्खा अक्सीर के तमाम दुनिया के मजाहिर में इस्लाम का तोहराए इम्तियाज और उसका रुकन आजम अकीदत तौहीद है, और ये भी जाहिर है, ये भी बिल्कुल जाहिर है, यानी बिल्कुल क्लियर बात है ये कि अकीदत तौहीद सिर्फ इस बात को नहीं कहते कि अल्लाह एक है, ठीक है, कि अल्लाह एक है, दो अल्लाह नहीं है, तीन अल्लाह नहीं है, कि क्या कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह ताला की जात को एक और अकेला जानने का नाम तौहीद नहीं है, बल्कि उसको तमाम सिफाते कमाल में यकता व बेमिसल मानने और उसके सिवा किसी मखलूक को उन सिफाते कमाल में उसका सही मुशरीक ना समझने को तौहीद कहते हैं। ये दोनों चीजें जब मिलती हैं तब तौहीद बनती है, वरना तौहीद नहीं होती, ठीक है। तो सिफात का मामला क्या है? जात एक मान लिया, ठीक है, कि अल्लाह एक है, दो अल्लाह नहीं है, तीन अल्लाह नहीं है, बड़ा आसान सा काम है ये, ठीक है, कि अल्लाह एक ही है। सिफात का जब मामला शामिल हाल हो जाता है तो फिर कौन बताएगा, फिर क्या होता है, फिर क्या ये चीज सिंपल रहती है या सिंपल नहीं रहती है, ठीक है, और अगर नहीं रहती है तो क्यों नहीं रहती है, ये कौन बताएगा? जो भी बताएगा उसको अगर कोई वर्चुअल गोल्ड मेडल होता तो वो हम दे देते, लेकिन वो है नहीं। वो देख नहीं सकेंगे, लेकिन अल्लाह ताला उनको ज्यादा खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला के पास बड़े अच्छे अच्छे गोल्ड मेडल होते हैं, हम क्या दे सकते हैं किसी को। ठीक है, तो कौन बताएगा कि जी सिफात में यानी तौहीद जो है ना, वो सिफात में भी अल्लाह को यकता और कामिल मानना और किसी दूसरे को इसका शरीक ना मानना। ठीक है, तो अब जब सिफात का मामला ऐड हो गया तौहीद के अंदर, ठीक है, पहले तो हम ये समझते थे ना कि अल्लाह की जात एक है, ये तौहीद तौहीद है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने एक दूसरी चीज ऐड कर दी कि सिफात में भी अल्लाह को यकता। अब जो भी सिफात का मामला शामिल हो गया, तो नाउ व्हाट डज इट एंटेल, अब क्या हुआ? तौहीद जो है वो आसान हो गई या तौहीद जो है वो मुश्किल हो गई? यानी तौहीद को मानना, तो मुवाहिद होना, जो तौहीद को मानता है उसको मुवाहिद कहते हैं, तो क्या ये बात अब आसान हो गई या मुश्किल हो गई? और अगर मुश्किल हो गई तो क्यों नहीं? जो सवाल है ना उसका जवाब चाहिए। तौहीद, इन्होंने लिखा तौहीद मुश्किल हो गई क्योंकि सिफात हम किसी और को देते हैं पिंग पोंग की तरह। नहीं, अब हर जगह तो हर चीज को नहीं शामिल कर सकते ना, पिंग पोंग यहाँ पे पता नहीं, कभी किसी के कोर्ट में कभी किसी के कोर्ट में, मुश्किल हो गई। ठीक है, चले जजाकल्ला, ये सही जवाब है कि मुश्किल हो गई, लेकिन ये पहले सवाल का सही जवाब है। अब दूसरा सवाल क्या था, क्यों मुश्किल हो गई? सिफात के एडिशन से अब तौहीद मुश्किल क्यों? कम से कम बजाहिर मुश्किल क्यों? हकीकतन मुश्किल नहीं हुई, लेकिन कम से कम बजाहिर देखा जाए तो बहुत मुश्किल हो गई। क्यों? इसलिए कि अब उनको नफ्स टूटने लगा, अब उसको नफ्स टूटने लगा लगेगा। अच्छा, तौहीद मुश्किल क्यों हो गई समझना पड़ेगा। देखें अल्लाह की जात कितनी है, कितनी है अल्लाह की जात? एक है ना, ठीक है ना, और अल्लाह की सिफात कितनी है ये बताएं। मुश्किल हो गई क्योंकि हम मखलूक ये सिफात असाइन करते हैं। तौहीद मुश्किल हो गई क्योंकि उसके लिए नफ्स को ये समझाना पड़ेगा कि ये तुम्हारी नहीं अल्लाह की सिफात है। सिफात के साथ मानने पर हर कंडीशन में अल्लाह पर रिलाई करना होगा, दूसरी जगह देखना गलत होगा, शिर्क होगा। ठीक है, क्योंकि उसी को खुदा मानते हैं जिसको सिफात का दर्जा दिया, झूठा खुदा। मुश्किल हो गई जी, सादा सा जवाब है इसका जो इन्होंने दिया फाइनली, कि मुश्किल हो गई क्योंकि अल्लाह की सिफात तो बहुत ज्यादा है, अल्लाह की सिफात इतनी क्लियर कट नहीं है। क्लियर कट वाला मामला इतना, हाँ ठीक है क्लियर कट नहीं है, ये भी कह सकते हैं कि समझना सिफात को समझना मुश्किल काम है, लेकिन सिफात की जस्ट अगर आप क्वांटिटी देखें ना, नंबर्स देखें, तो कितनी सिफात है अल्लाह ताला की। हम जैसे सादा तरीन लोगों को, कम इल्म लोगों को अल्लाह ताला की 99 सिफात का पता है। 99 नाम, ये क्या है नाम अल्लाह ताला के? 99 नाम जो है सिफात ही नाम है ना, तो 99 सिफात तो हम जैसे लोगों को भी पता है। ठीक है, याद नहीं है, लेकिन आप कुरान शरीफ का आखिरी पेज उठाएं तो आपको 99 सिफात नजर आ जाएंगी सामने सामने। अर रहीम, अर रहमान, अल वदूद, अल काबिज, अल बासित, राइट। लेकिन जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं उलमा, तो उनको तो 350 सिफात, 300 सिफाती नाम। हमारे एक दोस्त थे, अमेरिका में रहते थे, लेकिन गए दारुलूम देवबंद पढ़ के वापस आए, तो उनकी खास बात ये थी कि उनको 300 सिफाती नाम याद थे, तो बड़े मजे से जो है ना वो लय में पढ़ते थे, तो हम बड़े खुश होते थे उनको सुन करके, 300 अल्लाह ताला के सिफाती नाम। लेकिन उलमाए कराम ने फरमाया 300 भी नहीं, अल्लाह ताला के तो इतने सिफाती नाम है जिनका कि किसी को पता भी नहीं है। तो इतनी सिफात है अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला की जात तो एक ही है ना, बड़ा सिंपल, सिफात तो कितनी सारी है। ठीक है, सिफात में अल्लाह ताला को वाहिद मानना और वैसी सिफात किसी दूसरे के अंदर कमाल और यकता की सूरत में ना मानना, दिस मेक्स इट डिफिकल्ट। ठीक है, कहने का मकसद खाली ये नहीं है कि आपको डरा दिया जाए कि भाई आप जो है वो क्या वाकई तौहीद वाले हैं कि नहीं है, ये मकसद नहीं है हमारा कि आपको डरा दिया जाए खामखा। ठीक है, बल्कि मकसद ये है कि इतना सिंपल भी ना समझा जाए इसको। ठीक है, इतना सिंपल भी नहीं समझा जाए। बात यह है कि तौहीद के सिफात अल्लाह ताला की जितनी भी ज्यादा हो जाए ना, ठीक है ना, हमारा काम ये नहीं है कि हम सारी सिफात को जो है वो पढ़ते रहें, रटते रहें और जो है वो सारी सिफात का इल्म हासिल करेंगे तभी जो है वो हम तौहीद पे अमल करने वाले होंगे, ये मकसद नहीं है। बल्कि हमारा काम बहुत आसान है, वो ये है कि हम शिर्क ना करें किसी भी सिफत को जो है ना, किसी भी सिफत, चाहे हमें पता हो कि वो अल्लाह की सिफत है, चाहे हमें ना पता हो कि वो अल्लाह की सिफत। भाई जो कुछ है सब कुछ अल्लाह की तरफ से, ठीक है, किसी के अंदर कोई भी सिफत है ना, वो सब के सब अल्लाह की तरफ से। अपना तो जाती कुछ भी नहीं है ना हमारा, अपना तो जाती कुछ भी नहीं है ना हमारा। ठीक है, तो भाई जो भी है वो अल्लाह ही की तरफ से, तो जो भी अल्लाह की तरफ से वो अल्लाह की सिफत है। ठीक है, जो भी अल्लाह की तरफ से बंदों को मिला वो क्या है, वो अल्लाह की सिफत है। अल्लाह ने अपनी जात तो नहीं बंदों को दे दी ना, अल्लाह के किसी बंदे के अंदर, अल्लाह की किसी मखलूक के अंदर अल्लाह की जात तो नहीं है। ठीक है, अल्लाह की जात तो किसी इंसान में या किसी हैवान में, जैसे गाय, बंदर, चूहा, ये हिंदू लोग हैं वो गाय, बंदर, चूहा को जो है वो क्यों पूछते हैं? ठीक है, क्योंकि अल्लाह की जात जो है वो उसके अंदर फलूल हो गई है, नाउज बिल्ला, इस वजह से पूछते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो नहीं पूछते ना। ठीक है, तो जात का तो मसला ही नहीं, मसला तो सारा का सारा सिफात का है। लेकिन सिफात का मामला भी इतना मुश्किल नहीं है कि अब आप जो है वो किताबें खंगालते रहें कि अच्छा ये सिफत अल्लाह की है, ये सिफत अल्लाह, भाई सब सिफतें अल्लाह की हैं, जो कुछ मखलूक के पास है सब अल्लाह का दिया हुआ है, तो जो सिफत भी मखलूक के अंदर है वो अल्लाह की दी हुई सिफत है। तो किसी भी चीज में किसी भी मखलूक को कामिल और यकता नहीं समझना, किसी भी सिफत में किसी भी मखलूक को कामिल और यकता नहीं समझना, इतनी सी बात है। इसी को तौहीद कहते हैं। ठीक है, इसी को तौहीद कहते हैं। उम्मीद है कि ये आपने लिख लिया होगा। किसी भी सिफत में किसी भी मखलूक को कामिल और यकता नहीं समझ। ठीक है, तौहीद हो गई। जात का तो वैसे भी कोई मसला नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के लिए। ठीक है, मसला तो सारा सारा सिफात का था, क्योंकि सिफात अल्लाह की इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि हम तो उनका इहाता ही नहीं कर सकते। लेकिन आसान कैसे हो गया, अल्लाह ताला ने आसान बना दिया, ये बस किसी भी सिफत। ठीक है, तो आगे जो है वो चंद अहम सिफात की जो है यहाँ पे इन्होंने नाम लिखे हैं कि अल्लाह ताला की सिफात कमाल, हयात, जिंदगी। अब जिंदगी किस, हर मखलूक के अंदर जिंदगी है, सिर्फ इंसानों में जिंदगी नहीं है, जिन्नों में जिंदगी है, फरिश्तों में जिंदगी है, जिन जिन मखलूकात को हम जानते हैं वो यही है ना, इंसान, जिन, फरिश्ते, फिर उसके बाद जो है वो तीन और रह गई, हैवानात, नबातात, जमादात, खलास। ये कुल छह मखलूक हैं जिनको के हम जानते हैं, इन छह के अलावा हम किसी मखलूक को जानते ही नहीं है, ना नबी अलैहिस्सलाम ने बज़ाहिर हमें हमें किसी हमें से किसी को बताया। ये छह मखलूक हैं, इंसान, जिन, फरिश्ते, हैवानात, नबातात, जमादात, बस। ठीक है, तो सब के अंदर हयात है। क्यों हयात है? क्योंकि अल्लाह ने दी है। ठीक है, तो हयात की सिफत कामिल और यकता किसके अंदर है? अल्लाह। और नाकिस और शेयर्ड मोड में, यकता नहीं है यानी शेयरिंग मोड में है, वो किस में है? हम में है, आप में है, जानवरों में है, आपके सामने जो पेन पड़ा हुआ है उसके अंदर है। ठीक है, जो लकड़ी पड़ी हुई है, जो फ्रूट पड़ा हुआ है, जो खाने की कोई चीज पड़ी हुई है, कोई जानवर आपके घर के अंदर बतौर पेट के आपने रखा हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर हयात है। लेकिन ये हयात क्या है? ये नाकिस हयात। ठीक है, उसी तरह से इल्म, तो इल्म जो है वो बिल्ली को भी इल्म है आपके घर के अंदर जो रहती है ना, कि चूहे किधर मिलेंगे, मिसाल के तौर पर बिल्ली को भी कुछ ना कुछ इल्म है, मुझे भी कुछ ना कुछ इल्म है, आपको भी कुछ ना कुछ इल्म है। लेकिन कामिल और यकता ये सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह ने ही जो इन मेरे पास है या आपके पास है वो अल्लाह ही का दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन नाकिस है मेरे पास कि एक तो पूरा है नहीं, दूसरा ये कि हमेशा मेरे पास नहीं रहेगा, बल्कि एक दिन जो है ये इल्म भी मुझसे वापस ले लिया जाएगा, हयात मुझसे वापस ले ली जाएगी। कुदरत, अभी बोलने की कुदरत है, जुबान चल रही है, आपके सुनने की कुदरत है, आपके कान माशाल्लाह चल रहे हैं, दिमाग जो है वो मेरा और आपका दोनों का चल रहा है, ठीक है, ये कुदरत है। लेकिन ये कुदरत नाकिस है। सुनने की कुदरत, बसर देखने की कुदरत, इरादा करने की कुदरत, अकल इरादा करती है कि मैं इस रास्ते पे जाऊं, उस रास्ते पे जाऊं, फलाना काम करूं, फलाना करना काम करूं, ये इरादे की कुदरत, ये भी नाकिस है। इरादा भी कैसा हमारा कच्चा सा होता है, और ये इरादा भी जब तक जिंदगी उस वक्त तक है, जब मर गए तो उसके बाद इरादा भी खत्म हो जाएगा। मशीयत, मशीयत भी यही इसी तरह की मकसूद, मशीयत ये इस दी अल्लाह ताला की जो 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 चाहत होती है, खल्क तखलीक करने की सिफत, रिज्क रिस्क देने की सिफत, ये अल्लाह ताला की खुसूसी सिफात है, ठीक है। तो वो इन सिफात में ऐसा कामिल है कि इसके सिवा कोई मखलूक किसी सिफत में उसके बराबर नहीं हो सकता। ये तो चंद गिनवा दी ना खास खास अहम अहम सिफात, लेकिन इसके अलावा भी जितनी सिफात है कोई मखलूक अल्लाह ताला के बराबर नहीं हो सकती। फिर इन सिफात में भी दो सिफतें सबसे ज्यादा मुमताज है, एक इल्म, दूसरे कुदरत, ठीक है। अच्छा, ये बात हम मुसलमान भी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने सिफत दी, ये बात जो है वो मुशरिक भी कहते हैं कि जो बुतों के अंदर सिफतें हैं उनके मुताबिक, तो वो अल्लाह की दी हुई सिफत है, तो फर्क क्या है। ये मुसलमान भी कहता है कि जो भी अल्लाह की मखलूक है, हम कह रहे हैं ना कि जमादात जो है ये भी अल्लाह की मखलूक है, तो बुत जो होते हैं वो जमादात के ही बने हुए होते हैं, पत्थर के और मिट्टी के वगैरह, तो वो भी यही कहते हैं कि बुत के पास जो सिफत है वो भी अल्लाह की दी हुई सिफत, तो फिर फर्क क्या है एक मुसलमान में और एक मुशरिक में, क्या फर्क है इस वाली बात के हिसाब से देखा जाए तो क्या फर्क है दोनों में। वैसे एक से ज्यादा फर्क है, लेकिन कम से कम एक फर्क। किसी को नहीं पता क्या फर्क है भाई, सवाल समझ में नहीं। अच्छा, खैर जाए, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वास्ते से तालीम हासिल करते हैं सिफात को, नहीं भाई अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि भाई जमादात के अंदर भी जो सिफतें मौजूद हैं, जमादात में भी सिफतें मौजूद हैं, तो वो भी अल्लाह की दी हुई सिफतें हैं ना, ठीक है। तो अब जो मुशरिक हैं उन्होंने जमादात को मिला करके एक बुत बना दिया, ठीक है, एक मेटल का बुत, तांबे का बुत बना दिया, पत्थर का बुत बना दिया, और उन्होंने कहा कि जी ये बुत जो है ना ये रिस्क देता है, लेकिन ये जो रिस्क देता है ना ये अल्लाह की दी हुई सिफत की वजह से रिस्क देता है, अपनी तरफ से रिस्क नहीं देता, अल्लाह ने इसको ये सिफत दी है इसकी वजह से रिस्क देता है, वरना ये रिस्क नहीं देता है। लक्ष्मी देवी, हिंदुओं की लक्ष्मी देवी, तो लक्ष्मी देवी जो लक्ष्मी देती है ना, तो वो ईश्वर की तरफ से उसको ये चीज मिली है तब वो रिस्क देती है। तो हम भी तो ये कहते हैं कि अब्बू जो रिस्क लेकर के आते हैं घर में, तो वो अल्लाह ताला ने अब्बू को ये सलाहियत दी है तब वो रिस्क लेकर के आते हैं, ठीक है। तो फिर क्या फर्क है हमारी बात में और मुशरिक की बात में, क्या फर्क है। वो इस सिफात के बेस पर उसको खुदा मानते हैं, और हम मानते हैं कि मखलूक अल्लाह ने सिफत दी है लेकिन हम उन्हें खुदा नहीं मानते। वही तो ना, क्यों नहीं मानते, और वो क्यों मानते हैं, वो उनको ऐसी सिफात एस्क्राइब करते हैं जो उनमें है ही नहीं, है ही नहीं। ये एक जवाब है, अच्छा जवाब है बहुत, लेकिन ये एक जवाब है, ठीक है। लेकिन इससे भी बड़ा जवाब क्या है कि मुशरिक ये कहते हैं कि ये जो सिफत अल्लाह ने इसको दी है ना, ठीक है, जिन्होंने कौशल लिखी है डिस्ट्रीब्यूशन का, जो वह शफ़त को उस खास चीज की तरह मंसूब करते हैं जबकि हम उस शफ़त की नस्बत अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं देते। नहीं, वो ये करते हैं कि वो कहते हैं कि अल्लाह ने ये सिफत इस मखलूक को, जो कि बुत है या कोई इंसान है, ठीक है, ये सिफत जो है ना वो उसको दे दी है। इसको कहते हैं तफवीज करना, तफवीज, ता फा वाव या वाद, तफवीज, ठीक है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं डेलीगेट, डेलीगेट करना, ठीक है ना। तो अब ये जो सिफत है ना, ये इसी के पास है। अब अल्लाह ताला ये काम नहीं करता, अब ये काम अल्लाह नहीं करता, अब ये काम यही करता है, ठीक है। इस वजह से जो तुमने अपना काम करवाना है ना, तो तुम इसी से बात करो, इसी से बात करो, ठीक है। अल्लाह ने दे दिया इसको, तफवीज कर दिया इसको, डेलीगेट कर दिया इसको अथॉरिटी, ठीक है। अब यही है इसकी कंप्लीट अथॉरिटी, जो करना है इसी के पास जाके, अल्लाह के पास जाने की जरूरत। एक सब असल असल मसला ये, और दूसरा मसला ये भी है कि भाई जो आपने उसको कहा हुआ है बुत है, पत्थर का बना हुआ है, वो नहीं कर सकता ये वाला काम ना। तो आप जो बिल्कुल ही उसके अंदर जीरो ये सिफत है, और आप कह रहे हैं कि नहीं वो कर सकता है, भाई कहां से कर सकता है, क्या दलील है आपके पास कि पत्थर का बुत जो है वो लोगों को खाना दे सकता है। इंसान जो है वो तो लोगों को खाना दे सकता है, इंसान दे सकता है ना खाना, जब आप जाते हैं कहीं पे चैरिटी बांटने के लिए तो आप उनके प्लेट में जो है वो खाना डालती हैं चम्मच से, राइट, पतीली में से निकाल करके जो है बिरयानी डालती हैं, तो इंसान तो खाना दे सकता है, ठीक है। अगरचे के ये खाना भी वो अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं दे सकता, लेकिन दे तो सकता है ना। बुत तो ये काम कर ही नहीं सकता ना, ठीक है। तो बुत वाला मामला इसी वजह से सबसे ज्यादा बड़ी जहालत का मामला है कि वो तो जो काम नहीं कर सकता, आपने वो काम उसकी तरफ असाइन कर दिया, ठीक है। लेकिन दूसरा जो असल मसला था ना, वो ये था कि वो ये कहते हैं कि भाई अल्लाह ने ये काम इसको डेलीगेट कर दिया है, अब तुम इसी से अपना मामला करो, इसी से मांगो, इसी से बात करो, इसी को खुश करने की कोशिश करो, इसी की नाराजगी से डरने की फिक्र करो, राइट। अल्लाह के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज अल्लाह ने तो इसको डेलीगेट कर दिया, ठीक है। ये असल मसला है। और दूसरा मसला फिर ये होता है कि पत्थर का बुत है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन मुशरकीन जो होते हैं वो मुख्तलिफ लेवल्स के मुशरकीन होते हैं। अभी कुछ हमारे यहाँ बच्चों की भी, बल्कि बल्कि लड़कों लड़कों की क्लास चलती है, तो उसमें हम उनको समझा रहे थे कि शिर्क तो ईसाई भी करते हैं, शिर्क तो ईसाई भी करते हैं, शिर्क तो यहूदी भी करते हैं, और शिर्क तो बुत परस्त मुशरिकीन भी करते हैं। लेकिन जहन्नुम में जब ये सारे के सारे डाले जाएंगे ना, तो ईसाई जो है उनको सबसे कम अजाब होगा, इनके मुकाबले में सबसे कम अजाब होगा ईसाइयों को, उनसे ज्यादा अजाब होगा यहूदियों को, और उनसे ज्यादा अजाब होगा मुशरिकीन, यानी ये बुत परस्त मुशरिकीन। ऐसा क्यों, ठीक है। इतने आपसे भी अगर पूछ लें कि आपको कितनी बात समझ में आई। जहन्नुम के दर्जे सुने होंगे आपने, सबसे ऊंचे दर्जे में तो ईमान वाले होंगे जो कि पुले सरात पर से गुजरते हुए कट के नीचे गिर गए और जहन्नुम के अजाब में मुब्तला हो गए, ये सबसे ऊंचा दर्जा होगा, ठीक है। इसमें ईमान वाले ऊपर से दाखिल होंगे, यानी ऊपर से पुले सरात पे चल रहे होंगे, पुले सरात पे गुनाहों की वजह से कट के नीचे गिर जाएंगे, तो ये जहन्नुम के सबसे ऊंचे दर्जे में होंगे। इनके नीचे जो दर्जा है ना जहन्नुम का, ठीक है, जिसमें ऊपर वाले ईमान वाले नीचे के दर्जे में नहीं आ सकेंगे, बाकायदा इन दर्जों के दरमियान जो है ना वो कोई दीवार टाइप की चीज होगी, छत टाइप, जैसे छत होती है ना, ठीक है। तो उसके नीचे फिर ईसाई होंगे, तो ईसाई जो है उनके ऊपर अजाब जो होगा जहन्नुम का, ये ईमान वालों से यानी मुसलमानों से ज्यादा होगा, लेकिन यहूदियों से कम होगा, ठीक है। ईसाई के नीचे जो दर्जा होगा ईसाइयों से नीचे, वो यहूदियों का दर्जा होगा, और यहूदियों के ऊपर जो अजाब होगा वो ईसाइयों से ज्यादा होगा, लेकिन नीचे वाले जो दर्जा है बुत परस्त मुशरिकीन, उनसे कम होगा, ठीक है। फिर यहूदियों के नीचे बुत परस्त मुशरिकीन का दर्जा होगा, और फिर सबसे नीचे मुनाफिकीन का दर्जा होगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों है कि ईसाइयों को सबसे कम अजाब, यहूदियों को उससे ज्यादा आजाद और बुत परस्त मुशरिकीन को उससे भी ज्यादा आजाद। ठीक है, उसकी वजह क्योंकि साफ जाहिर बात थी कि बुत कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि बुत जो होते हैं ना, ये जमादात की कैटेगरी से ताल्लुक रखते, जमादात की। तो जो ईसाई हैं वो किसको अल्लाह ताला के साथ शरीक करते हैं? वो अशरफुल मखलूकात को अल्लाह ताला के साथ शरीक करते हैं। और अशरफुल मखलूकात यानी इंसान में से भी कौन सा वाला इंसान? ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको के अल्लाह ताला ने वाकई मुर्दा को जिंदा करने की और कोढ़ी को जो है वो ठीक करने की सिफात दी थी ईसा अलैहिस्सलाम को। ठीक है, पत्थर वो परिंदे का जो है वो स्टैचू बनाया और वो उड़ना शुरू हो गया। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को ये सिफात दी थी। ठीक है, तो ईसा अलैहिस्सलाम अगरचे के इंसान थे, मतलब अगरचे के मखलूक थे, लेकिन सबसे आला मखलूक थे। ठीक है ना, यानी अशरफुल मखलूकात। और अशरफुल मखलूकात में से भी नबी अलैहिस्सलाम के बाद ईसा अलैहिस्सलाम। ठीक है, तो उनको अल्लाह ताला के साथ शरीक किया। अजाब तो हमेशा हमेशा का इनको भी होगा, लेकिन इनका शिर्क जो था वो सबसे कम दर्जे का शिर्क था, क्योंकि उनके अंदर ऐसी सिफात थी, अल्लाह की दी हुई सिफात थी। लेकिन थी तो ना, यहूदियों को, यहूदियों ने उजैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के साथ शरीक किया। उजैर अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे, इंसान थे, अल्लाह के नबी थे। लेकिन यहूदियों को ईसाइयों से ज्यादा अजाब क्यों? क्योंकि यहूदियों की एक एक्स्ट्रा फॉल्ट ये थी कि वो नबियों को बहुत अजियत देते थे, हत्ता के कत्ल कर देते थे, और नबियों की नाक में दम कर देते थे। नबियों की नाक में दम करने का मतलब समझते हैं ना? अगर आपकी नाक में आपके किसी बच्चे ने दम किया होगा तो आपको पता होगा इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, वो नबियों को इतना सताते थे और इतना सताते थे कि किसी को इंतहा नहीं। ये उनकी एक्स्ट्रा मिस्टेक थी जिसके ऊपर उनको ईसाइयों से ज्यादा अजाब मिलेगा। हालांकि शिर्क वो भी उसी किस्म का करते थे जिस तरह के ईसाई करते थे। ठीक है, यानी इंसान और नबी को अल्लाह ताला का शरीक। लेकिन जो बुत परस्त मुशरिकीन है, ये किसको अल्लाह ताला के साथ शरीक करते थे? उस मखलूक को अल्लाह ताला की, कि जिसके अंदर ये सलाहियतें हैं ही नहीं और इन सलाहियतों का कोई एहतमाल ही नहीं है, उनको अल्लाह ताला के साथ शरीक करते। पत्थर के बुत तो, और इस किस्म के लकड़ी के, और प्लैटिनम के बने हुए, तो ब्रॉन्ज के बने हुए, तो पता नहीं किस किस धातु के बने हुए बुतों को अल्लाह ताला के साथ शरीक करते हैं। ठीक है, और मुनाफिकीन जो सबसे नीचे होंगे वो सबसे ज्यादा अजाब पाने वाले क्यों होंगे? क्योंकि शिर्क तो वो करते थे, चाहे वो ईसाई वाला शिर्क करते थे, चाहे वो यहूदियत वाला शिर्क करते थे, चाहे वो बुत परस्तों वाला शिर्क करते थे, लेकिन उनकी एक्स्ट्रा मिस्टेक क्या थी कि वो धोखा देते। धोखा देना, ये धोखा देना जो है, ये सताने से भी ज्यादा अल्लाह ताला को नापसंद। सोच लें जरा, सोच लें। ठीक है, ये यहूदियों का जो मामला था ना, सताना। ठीक है, धोखेबाज यहूदी, इनको जो ओरिजिनल यहूदी हैं उनसे भी ज्यादा अजीब, ज्यादा शदीद अजाब मिलेगा ना। ठीक है, क्योंकि धोखा जो है, क्या बात समझ में आई कि नबियों को सताने से भी ज्यादा बुरा जो अल्लाह ताला को लगता है वो धोखा देना होता है। ठीक है, और जमादात को अल्लाह ताला के शरीक ठहराने का जो गुनाह है, उससे भी ज्यादा अल्लाह ताला को नफरत धोखा देने से। ठीक है, तो धोखेबाज जो होंगे ना, ये जान लोगे सबसे निचले दर्जे के। अल्लाह ताला बात की समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। बाकी हम थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं, 5 मिनट तकरीबन, 5-10 मिनट हम और पढ़ लेते हैं। के फरमाते हैं कि इन सिफात में भी दो सिफतें सबसे ज्यादा मुमताज हैं, यूनिक, एक इल्म और दूसरे कुदरत। इसका इल्म भी तमाम मौजूद व गैर मौजूद, यानी अल्लाह ताला का इल्म, उसका इल्म भी तमाम मौजूद और गैर मौजूद, जाहिर और मख्फी, बड़े और छोटे, हर जर्रा जर्रा पर हावी और मुनीत है, यानी हर जर्रा जर्रा के इल्म से ज्यादा है और हर जर्रा जर्रा के इल्म को कवर करता है, मुहीत है, ठीक है, और उसकी कुदरत भी उन सब पर पूरी पूरी मुहीत है, यानी सिर्फ ये नहीं कि पता है कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये इसने ये करना है, इसने वो करना है, ये बाद में आएगा, ये पहले आएगा, बल्कि के उसको क्या करवाना है, उससे कैसे उसको लेके चलना है, ये सारी चीजों के ऊपर भी कुदरत अल्लाह ताला की मुहीत है। मज़कूरा दो आयतों में इन्हीं दो सिफतों का बयान है, और ये दो सिफतें ऐसी हैं कि अगर इंसान अल्लाह ताला की इन दो सिफतों पर मुकम्मल यकीन और उसके इस्तेहजार की कैफियत पैदा कर ले, ठीक है, यकीन हो जाए इसके ऊपर, कोई डाउट ना रहे, यकीन डाउट के, शक के मुतजाद होता है, ठीक है, शक इज नॉट इक्वल टू यकीन, बल्कि शक जो है ना, ये यकीन का बिल्कुल ऑपोजिट है। तो यकीन कैसे समझ में आएगा हमारे, कि भाई यकीन है मेरे पास कि नहीं है, या यकीन क्या चीज होती है, शक नहीं है इससे समझ में आएगा कि यकीन है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि जब शक होता है ना किसी को, तो ये फौरन पता चल जाता है कि हाँ इसको शक है, ठीक है, ये नहीं पता चलता कि कितना यकीन है, कितना पक्का यकीन है, कितना कच्चा यकीन है, नहीं ये नहीं पता चल सकेगा, क्योंकि यकीन क्या है, ये दिन की रोशनी की तरह की चीज है, रोशनी की तरह की चीज है, ये तो उसी वक्त पता चलेगा कि जबकि अंधेरा देखा जाएगा कि भाई अंधेरा कितना है, ठीक है ना, तब पता चलेगा कि रोशनी 100% है, कि रोशनी 50% है, कि रोशनी 25% है, या सिर्फ 5% है, ये अंधेरों को देख करके पता चलेगा कि रोशनी कितनी है। बिल्कुल यही मामला यकीन का भी है कि पता नहीं चलता खुद ब खुद अपने जोम में, मेरा तो 100% नहीं, मेरा तो 300% यकीन है, आपको पता ही कोई नहीं है कि यकीन होती क्या चीज है, जो आप ऐसी ना बड़कियां मार रही हैं खाली, ठीक है, इसको हमारे बड़े जो है ना बड़कियां मारना कहते थे, बूस्टिंग कहते हैं उसको अंग्रेजी में, ये तो तब पता चलेगा जब आप शक की तरफ नजर करें कि भाई किस बात में मेरे दिल में जो है ना वो शक आ रहा है, मैं क्लियर नहीं हूं, मैं अनक्लियर हूं, मैं जो हूं इस बारे में जो है वो तजब्जुब का शिकार हूं, तब पता चलेगा कि यकीन कितना था और कितना नहीं, ठीक है। तो फरमाते हैं कि मुकम्मल यकीन अगर हो और उसके इस्तेहजार की कैफियत पैदा कर ले, इस्तेहजार का मतलब ये होता है कि हर वक्त, यानी ये बात जहन पर छाई रहे, जहन पर गालिब रहे, ठीक है, जैसे गालिब रहता है ना कि बस ये काम करना है, एक कुछ काम ऐसे होते हैं माशाल्लाह खवातीन के भी, पूरे खानदारी वाले में भी पढ़ रहे हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको अलार्म सेट करने की जरूरत नहीं होती, जिसके लिए आपको थिंग्स टू डू लिस्ट के अंदर लिखने की जरूरत नहीं होती, क्यों, इसलिए कि वो आपके आपको उनका इस्तेहजार हासिल है, वो हर वक्त हाजिर है आपके दिमाग के ऊपर, थिंग्स टू डू लिस्ट में लिखने की जरूरत कोई नहीं उसको, ठीक है, तो ऐसी कैफियत पैदा हो जाए तो इससे फिर कोई जुर्म और गुनाह सरजद हो ही नहीं सकता। लेकिन इसके लिए पहले भी बात हो चुकी है कि इसके लिए एक और शर्त जो कि इन दोनों से पहले आती है, वो ये है कि पता तो होना कि जुर्म क्या होता है, किस चीज को जुर्म कहते हैं, ठीक है ना, अगर नेकी को जो है वो जुर्म समझ रहा है और जुर्म को जो है वो नेकी समझ रहा है, तो फिर अल्लाह ताला की सिफतों पर यकीन और उसका इस्तेजार होने से भी फायदा नहीं होता। अब ये बात हकीकत यही है कि जब अगर पता ही कोई नहीं है ना कि जुर्म क्या होता है और जो है वो नेकी क्या होती है, तो इसका मतलब भी यही है कि इसको अल्लाह के इल्म और कुदरत के ऊपर यकीन है ही नहीं और इस्तेजार है ही नहीं। तो इस वजह से ये जो जुमला हमने कहा कि अगर इल्म नहीं है कि जुर्म क्या है और नेकी क्या है, तो यकीन और इस्तेजार होने के बावजूद फायदा नहीं, ये जुमला जो है ना, ये बस बात समझाने के लिए, समझ इसकी बात समझाने के लिए जुमला का, ठीक है, वरना हकीकत ये है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को यकीन और इस्तेदार हासिल भी है और उसको जुर्म और नेकी का पता भी नहीं है, ठीक है। बहरहाल तो ये बात जुमे के दरस में भी तफसील से हो चुकी, तो हम आगे बढ़ते हैं कि जाहिर है कि अगर एक इंसान को अपने हर कौल व अमल और नशस्त व बर्खास्त में हर कदम पर यह मुस्तहजर रहे कि एक अलीम व खबीर, कादिर मुतलक मुझे हर वक्त देख रहा है, और मेरे जाहिर व बातिन और दिल के इरादे और ख्याल तक से वाकिफ है, तो ये इस्तेज़ार कभी उसका कदम उस कादर मुतलक की नाफरमानी की तरफ नहीं उठने देगा। इसीलिए ये दोनों आयतें इंसान को इंसान कामिल बनाने और उसके आमाल व अखलाक को दुरुस्त करने और दुरुस्त रखने में नुस्खे अक्सीर है। ठीक है, तो ये तीन चीजें अगर मिल जाएं, यानी इल्म, सही इल्म, ये मिल जाए, दूसरा यकीन और तीसरा इस्तेजार, तो फिर बंदा बंदा कामिल बन सकता है। ठीक है, पहली आयत में इरशाद फरमाया, वइंदहु मफातिहुल गैबी ला यालमुहा इल्ला हु, लफ्ज़ मफातिह जमा है उसका मुफरत, मफ्तहुन बिफतह मीम भी हो सकता है, जो खजाने के लिए बोला जाता है। मफ्तहुन, मफ्तहुन का जो लफ्ज है ना, ये इसम जर्फ का सीगा होता है अरबी जुबान में। इसका मतलब ये होता है कि फनाना अमल जो है ना, जिस जगह पर होता हो उस जगह को ये कहा जाता है। तो मफ्तहुन खुलने की जगह, ठीक है, तो खुलने की जगह से मुराद कि आपके सारे मसले हल हो जाएं और आपकी जो है ना वो ख्वाहिशात पूरी होने की जो जगह है वो खजाना है। खजाने के अंदर जो है ना वो आपके माल, दौलत, सोना, चांदी, जेवर, सब सब चीज जो है वो खजाने के अंदर है। यहाँ पे आपकी तबीयत खुल जाएगी बिल्कुल, राइट। तो मफ्तहुन मीम के फतहा के साथ मफ्तहुन बनेगा, तो खजाने के लिए इसको बोला जाता है। और इसको मिफ्तहुन भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है, मिफ्तहुन बिकसरे मीम भी हो सकता है, यानी मीम के ऊपर जेर, जिसके मानी है कुंजी यानी चाबी। तो लफ्ज मफातेह में दोनों मानी की गुंजाइश है, ठीक है, क्यों कुरान मजीद में ना मफ्तहुन आया ना मिफ्तहुन आया इस आयत के अंदर, बल्कि मफातेह आया, ठीक है। तो मफातेह जो है ये मफ्तहुन की भी जमा बनती है और मिफ्तहुन की भी जमा बनती है, ठीक है, तो इस वजह से दोनों माने की इसके अंदर गुंजाइश है। इसीलिए बाज मुफस्सरीन और मुतरजमीन ने इसका तर्जुमा खजानों से किया है और बाज ने कुंजियों से किया है। नबी अलैहिस्सलाम से कोई हदीस नहीं मिली कि जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने बता दिया हो कि यहाँ पे अल्लाह ताला जो है वो खजाना मुराद ले रहे हैं या चाबियां मुराद ले रहे हैं। इस वजह से मुफस्सरीन ने फिर अरबी जुबान की बुनियाद पर इसका मतलब समझने की कोशिश करी। अगर नबी अलैहिस्सलाम बता देते तो जरूरत ही कोई नहीं थी कि अरबी जुबान की तरफ इल्तफात किया जाए। तो बाज ने कुंजियों से और बाज ने खजानों से इसका मतलब किया, और हासिल दोनों का एक ही है, लेकिन दोनों का अलग अलग मतलब ही करें ना, तो मकसद तो एक ही है, क्योंकि कुंजियों का मालिक होने से भी खजानों का मालिक होना ही मुराद होता है, ठीक है। वो जो चौकीदार होता है ना, जिसके पास चाबियां होती हैं, तो उसके पास चाबियां होने का मतलब ये नहीं होता कि वो मालिक है खजाने का। वो चाबियां जो है वो मालिक की मर्जी के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकता ना, ठीक है। तो इसी वजह से खाली चाबियों का होना ये यहां मुराद नहीं है, बल्कि चाबियों के खजाने का मालिक होना मुराद है। अच्छा, अब इसके बाद जो तफसील शुरू हो रही है, बड़ी बहुत अहम भी है एक्चुअली। बज़ाहिर लगता है कि जैसे बड़ी कोई बोरिंग किस्म की और थियोरेटिकल किस्म की आगे बातें आ रही हैं इल्म गैब के ऊपर, ठीक है, तो बज़ाहिर ये शायद आपको थियोरेटिकल और ज़्यादा तफसीली लगे बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट और बहुत अहम आगे डिटेल्स आ रही हैं, जिसका कि इवन जो है वो यानी आप सबको जो है वो मालूम होना अहम है इंशाल्लाह। तो वो फिर ज़ाहिर है चूंकि एक लंबी बात है, तो वो अगली क्लास के अंदर ही हम शुरू करेंगे। इस वक्त तो इस वाली क्लास का टाइम खत्म हो चुका है। किसी को कोई सवाल पूछना है या कोई और ऐसी अहम बात शेयर करनी है तो आप करके बता सकते हैं। तफसीर क्लास में आप, उम्मीद है कि इतना तो अंदाजा हुआ होगा कि बहुत सारी बातें हुई हैं, बड़ी अहम, तौहीद से ज्यादा अहम और चीज क्या हो सकती है, उसके बारे में हमने कैसी कैसी बातें इस क्लास में करी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, एक दफा सुनने की तो अल्लाह ने तौफीक दे दी है, लेकिन अब हमने अल्लाह ताला से मजीद तौफीक मांगनी है कि अल्लाह अब इस बात को याद भी रखने की और अमल में लाने की भी तौफीक अता फरमा दें, ठीक है। तो अब तौफीक की दुआ आपने मांगनी है, और दूसरी जो है वो चीज़ होती है दवा करना, ठीक है, कि फिर दवा भी करनी होती है, तो दवा करने के लिए इसकी तकरार का एहतमाम करना है, ठीक है, क्योंकि जब तक किसी पढ़ी हुई बात का, सुनी हुई बात का की दोहराई ना हो, तो उस वक्त तक जो है ना वो बात याद नहीं रहती, और सही तरह से बल्कि समझ में भी आ रही थी। तो जो लोग तकरार का माशाल्लाह हिस्सा हैं, अल्लाह ताला उनके इल्म में मजीद इजाफा और बरकत और अमल की तौफीक अता फरमाए उनको, लेकिन जो हिस्सा नहीं है ना, तो वो तकरार का हिस्सा बनने की कोशिश करें। और उसका तरीका खाली इतना सा है कि आप जो है व्हाट्सएप के ऊपर हमें बता दें, तो हम आपको किसी तकरार का हिस्सा बना देंगे। फिर आप जो है वो हफ्ते में एक दिन जब ये खवातीन मिलती हैं दरस कुरान की तकरार करने के लिए, तो आप भी उसके अंदर शामिल हो जाएं। लोग बात करते रहेंगे, आप सुनती रहिएगा, फिर किसी दिन आप भी जो है उसमें शामिल हो जाइएगा। और इस तरीके से फिर वो लोग माशाल्लाह नोट्स बनाती हैं और नोट्स से मजीद जो है वो बात समझ में आ जाती है और याद रह जाती है। इंसान कामिल किसको कहते हैं? इंसान कामिल कामिल इंसान को कहते हैं। यहाँ पे इंसान कामिल से मुराद जो है ना, वो ये नहीं है कि सारे इंसानों में सबसे कामिल कौन थे, वो तो नबी अलैहिस्सलाम थे ना, और तो कोई नहीं। ठीक है, तो इंसान कामिल से यहाँ पे मुराद ये है कि जो के अल्लाह ताला की नाफरमानी को तर्क करके मुत्तकी इंसान बन जाए। ठीक है, मुत्तकी इंसान, इसको जो है वो इंसान कामिल कहा जाता है। तो वो नबी अलैहिस्सलाम तो सबसे ज्यादा मुत्तकी थे, लेकिन 21वीं सदी के अंदर या 1400 साल गुजरने के बाद भी हम में से जो भी गुनाहों से पक्की तौबा कर लेगा और अल्लाह की फरमानबरदारी वाली जिंदगी में लग जाएगा, बस वो इंसान कामिल बन गया। कोई K2 पहाड़ सर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंसान काबिल बनने के लिए। ठीक है, और कोई चलें, क्लास खत्म करते हैं। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।